Godlywood Studios presents ब्रह्मकुमारीज पॉडकास्ट। जिंदगी बने आसान।
नमस्कार दोस्तों, ओम शांति। स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम जिंदगी बने आसान में। दोस्तों, अपने आप को बेहतर बनाने में आप इतना समय लगा दीजिए कि आपको औरों की बातों के बारे में सोचने के लिए समय ही ना रहे। ज़िंदगी में अगर आपको बेहतर बनना है, जहां आप हैं वहां से आपको आगे की ओर बढ़ना है, तो पहल आपको ही करनी होगी, ना कि कोई और करेगा। इस बात के साथ आज के प्रोग्राम की हम शुरुआत करते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर गिरीश पटेल जी। ओम शांति।
ओम शांति।
वेलकम टू आवर शो।
थैंक यू
डॉक्टर साहब। पिछले एपिसोड में हमने स्ट्रेस के बारे में जाना, जिसमें हमने जाना कि दो सीज हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक है कंट्रोल और दूसरा है चैलेंज। अब बचे दो और, इनके बारे में हमें बताइए।
जो दूसरे दो सीज है, कम्युनिकेट और कॉन्सेंट्रेट।
ओके,
तो कम्युनिकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है
जी,
क्योंकि इसके अलग अलग मायने। एक तो कि जब भी आपके अंदर में कुछ स्ट्रेस आता है, जैसे कि वर्क प्रेशर आया, आपको कुछ बुरा लगा और कोई बात याद आ गई
जी,
तब अधिकतर व्यक्ति उसको दबाने की कोशिश करता है।
करेक्ट।
उसे हम भूलने की कोशिश ना करें, क्योंकि जब भूलने की कोशिश करते हैं तब शायद भूल जाएंगे, लेकिन उसकी भी कोई प्राइस होती है।
ओके।
उसमें डिफरेंट अनकॉन्शियस मैकेनिज्म्स होती है।
ओके।
कि जो बहुत ही बुरा प्रभाव डाल सकती है।
ओके।
आपको मानसिक रूप से बीमार भी कर सकती है। इसलिए सबसे अच्छा है कि वो बात को आप बाहर निकालिए। अलग अलग रूप हो सकते। कोई कहेगा कि मेरे अंदर में जो बाहर निकलेगा तो ज्वालामुखी फटेगा, सारा प्रॉब्लम हो जाएगा।
करेक्ट।
परंतु ये सोचिए कि कौन सा ऐसा तरीका है कि जब स्टेबिलिटी के साथ मैं कम्युनिकेट कर सकता हूँ।
ओके।
क्योंकि जीवन एक प्रेशर कुकर जैसा है। प्रेशर कुकर में जब प्रेशर बढ़ता है तो क्या होता है, क्या होता है बताइए?
वो सिटी वॉल जो होता है, वो
सिटी जो बचती हो, क्या है वो? सेफ्टी वाल है।
ओके।
वो सेफ्टी वाल ऑन होता है तो एक्स्ट्रा प्रेशर निकल जाता है।
ओके।
मैं हमेशा सोचता हूँ कि भगवान ने गलती कर दी।
अच्छा।
तो मेरे जैसे डॉक्टरों की कहीं जरूरत ही नहीं होती, अगर यहाँ पर कहीं वो एक सेफ्टी वाल लगा देता कि जब भी प्रेशर आए तो सेफ्टी वाल ऑन करो,
सारी प्रेशर निकल जाए। वाओ, ऐसा होता तो कितना ब्यूटीफुल।
लेकिन भगवान ने सेफ्टी वाल दिया है
जी।
वह सेफ्टी वाल है कम्युनिकेट।
ओके।
एक तो हो सकता है उस व्यक्ति के साथ ही, कि भी जिससे मन मुटावे उसे बैठ के प्यार से बताओ।
करेक्ट।
कई बार वो संभव नहीं भी हो।
करेक्ट।
तो और कोई मित्र है
उनको बताओ।
हाँ, सुनता है उसको भी आप बताओ ना। जब एक बार मन हल्का हो जाएगा तब भी बहुत बड़ा फायदा होगा।
करेक्ट।
मैंने कई बार देखा, आश्चर्य की बात होती है। शुरू में तो मैं इसको मानता ही नहीं था। कई बार देखा कि भी पेशेंट आया, बोलता है कहां से शुरू करूं ना, अपना प्रॉब्लम उसको बताना है, तब कहते हैं कहीं से भी शुरू करो। फिर वो बोलना शुरू करता है, करीब एक घंटे तक बोलता ही रहता है। हमको तो सिर्फ सुनना है, वो बोल रहा है, अपने प्रॉब्लम बता रहा है, लेकिन वो एक घंटे के बाद ये कह के जाता है कि हाँ बहुत अच्छा लगा। है ना, हमने उसको कोई एडवाइस नहीं दी है, कोई काउंसिलिंग नहीं दिया है, क्योंकि उसकी अंदर की बात निकल गई।
करेक्ट। और वो कहीं ना कहीं आपको एज अ सेफ लिसनर समझते हैं, बिकॉज आप किसी को जाकर के
बोलेंगे नहीं। तो लेकिन और लिसनर भी तो सेफ हो सकते हैं। और इसमें सबसे अच्छा तो यह है, पता है सबसे अच्छा सेल्फ सेफ लिसनर कौन है?
कौन?
भगवान।
अच्छा।
है ना, भगवान
को आप बताओ, वो तो जाके किसी को बोलेंगे,
बोलने वाला नहीं है।
करेक्ट।
है ना, और उल्टा भगवान को बताने में और एक दूसरा फायदा है कि आपको कुछ इंट्यूशन से प्रेरणाएं भी मिल जाएगी।
अच्छा।
दैट इंट्यूशन कैन बी ऑफ ग्रेट हेल्प।
Wow, that's
great. तो इसलिए हाँ, always maybe talk to people also, किन कई बार लगे कि लोग नहीं है तो परमात्मा के सामने भी बैठ करके सारी बात बताओ।
Okay.
No, it's a wonderful thing in fact.
जी, that's a
और कभी कभी रोना भी बुरा नहीं है।
अच्छा
अच्छा नहीं, गलत मान्यता है कि भी पुरुष रोते नहीं है, नहीं इसीलिए पुरुष को ज्यादा स्ट्रेस होता है
क्योंकि वो प्रेशर कहीं निकाल नहीं सकते हैं। ओके।
लेकिन कभी एक्सेस प्रेशर हो जाए, बस सबके सामने नहीं रो, अकेले में रो लेना भी अच्छा है।
ओके।
क्योंकि आंसुओं में प्रोलैक्टिन और कोर्टिसोल दोनों स्ट्रेस हार्मोन्स है।
ओके।
ना तो वो स्ट्रेस हार्मोन सारे निकल जाते हैं, है ना। तो कम्युनिकेट करना बहुत अच्छी चीज है। दूसरा ये भी कि भी हमारी जो प्रॉब्लम है वो भी हम कम्युनिकेट करें।
ओके।
कई बार तो ये भी कर सकते हैं कि कोई सुनने वाला नहीं, लिखने लगो।
ओके।
जो लोग अपनी डायरी मेंटेन करते हैं उनको भी काफी फायदा होता है।
अच्छा।
नहीं, क्योंकि वो लिख रहा है अंदर की बात बाहर। हाँ,
कहीं ना कहीं थॉट्स जो सारे एंटैंगल्ड हैं वो सारे बाहर निकल
बाहर
जाते हैं।
ओके। तो नहीं, कम्युनिकेट करना बहुत ही जरूरी है। और दूसरा है कॉन्सेंट्रेट। कॉन्सेंट्रेट के डिफरेंट मीनिंग हो सकते हैं। एक तो कॉन्सेंट्रेट का मीनिंग है कि हम मेडिटेशन करें। मेडिटेशन भी एक प्रकार से हमारी मन बुद्धि को परमात्मा पर एकाग्र करने की बात है कि जिसके बहुत सारे फायदे हैं। और साथ साथ कॉन्सेंट्रेशन इसको भी कह सकते हैं कि अपनी कमियों पर कॉन्सेंट्रेट करो। एक्चुअली हम सब में ना कुछ स्पेसिफिक कमियां है जिसको कहेंगे वीक पॉइंट्स है
जी,
कि वहां आपको समस्या आती है। तो अगर हमें यह पता चले कि मेरे वीक पॉइंट्स कौन से है
जी,
और यह थोड़ा सा जैसे इंट्रोस्पेक्शन की भी बात की थी
जी,
कि अलग अलग एरिया में हमें ढूंढना चाहिए। कोई व्यक्ति काम में बहुत अच्छा हो सकता है। मेरे एक पेशेंट थे, वर्क प्लेस पे तो एक्सलेंट थे, सभी लोग उसकी प्रशंसा करते थे कि यू आर वंडरफुल
जी,
लेकिन पत्नी के साथ डील करना उनको नहीं आता था।
और
पत्नी थोड़ी डोमिनेटिंग भी थी।
ओके।
और उनको डील करना नहीं आता था।
हाँ जी।
तो जैसे घर जाते थे स्ट्रेस हो जाता था।
ओके।
और अननोइंगली उन्होंने क्या किया कि कोई ना कोई बहाना बता के घर लेट जाएंगे।
ओके। उस चीज को अवॉइड कर,
इवन कहीं गार्डन में बैठे रहेंगे, रेलवे स्टेशन पर बैठे रहेंगे, लेकिन घर नहीं जाएंगे। परंतु ये सॉल्यूशन नहीं है, यह तो अवॉइड करना हुआ।
करेक्ट।
फिर जब भी हमने उनसे बात की, उनको समझाया कि देखो, ऑल्दो नो शी इज डोमिनेटिंग, इट्स परफेक्ट।
करेक्ट।
वन सॉल्यूशन इज यू एक्सेप्ट।
करेक्ट।
आदमी कई लोग कहते कि मेरे घर में पत्नी बॉस है।
हाँ, वो चीज को एक्सेप्ट कर लिया उन्होंने कि वैसा ही है।
दैट कैन बी वन पार्ट ऑफ इट। और दूसरा पार्ट ये भी हो सकता है कि बैठ करके थोड़ा भी एसर्ट करिए।
ओके।
कि देखो ये टू मच होता है, इससे मेरे पर प्रेशर आता है, कभी मैं बीमार हो जाऊंगा तो तुमको ही प्रॉब्लम होगा अल्टीमेटली।
करेक्ट।
ऐसी कुछ बातें हैं, वो अगर उनको बताई जाए, है ना, खुद भी एक बार एसर्ट कर लेवे।
करेक्ट।
तो बुरा नहीं है
जी।
और जब वो रियलाइज हो जाएगा कि भी इन्होंने एसर्ट किया तो भी चेंज आएगा। ऐसे और सभी एरिया में हमारे जीवन के बहुत सारे एरियाज है, जैसे कि पर्सनल लाइफ, वर्क प्लेस, बच्चों के साथ डील करना, पत्नी के साथ डील करना, फ्रेंड्स के साथ डील करना, अपने प्रोजेक्ट्स को बनाना, उसमें कहाँ पर मेरे में वीकनेस है।
okay.
कौन से एरियाज में। आज कई लोग सब कुछ वंडरफुल है परंतु बच्चों के साथ डिस्टर्ब हो जाते हैं। जैसे बच्चों के साथ आधा घंटा आ गए तो उनको टेंशन आ जाता है।
क्योंकि शायद ये जरूरी नहीं है कि किसी एक व्यक्ति की बात कर रहे हैं, आज हम किसी भी सिचुएशन की बात कर रहे हैं। कई सारे ऐसे रिलेशनशिप्स होते हैं जिसमें हम उन्हें पीछे छोड़ करके रहना चाहो, हम उन्हें अवॉइड करते हैं। तो ये एक जनरलाइज टर्म हम बता रहे हैं ना।
जनरलाइज भी ठीक है
जी,
परंतु उदाहरण के रूप में ने कोई यह समझे।
हाँ जी।
कि भाई जब मैं बच्चों के साथ होता हूँ तो इरिटेट हो जाता हूँ।
ओके।
है ना, तब डिस्टर्ब हो जाता हूँ, तो तब उसे उस एरिया में काम करना, वहां कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए।
okay.
कि नाउ हाउ आई कैन एंजॉय विद चिल्ड्रन। ना कुछ चीजें तो पक्की भी हो जाए कि भी बच्चे हैं तो मस्ती करेंगे ही करेंगे। नो, रादर देन फीलिंग डिस्टर्ब यू एंजॉय।
करेक्ट।
है ना, तो वहाँ व्यक्ति को सीखना पड़ेगा
एक्सेप्टेंस,
बच्चे एक तो एक्सेप्ट और दूसरा सब बच्चे खेल रहे, हम भी खेलने लगे ना, बच्चे कुछ यहाँ वहाँ उल्टा सीधा कर रहे, यू एंजॉय इट,
करेक्ट
ना, तो इफ यू एंजॉय देन देयर इज नथिंग,
करेक्ट।
और ये सिंपल सी बात है, अभी आपको बताते बताते एक दूसरे है बात मुझे पूरी याद आती है,
हाँ जी।
कि किस प्रकार से अगर हम वो सिचुएशन को कोप करना सीख जाए तो बहुत बड़ा परिवर्तन हो सकता है। एक लेखक थे, महिला लेखक थे,
हाँ जी।
तो उन्होंने पूरा लिखा है, एक लेख लिखा है
जी।
कि भी एक दिन खूब बारिश हुई, तो मैं एकदम डिस्टर्ब हुई कि अचानक बारिश आ गई, मैंने तैयारी भी नहीं की है, ये सब प्रॉब्लम वैसा हुआ, रास्ते में भीग गई, छाता लेके नहीं गई थी, सचमुच भगवान को भी कोस रही थी कि क्या है, कौन से समय बारिश ला दी। फिर जब अपने घर के पास से आने लगी तो रास्ते में झुग्गी झोपड़ियां थी,
okay।
और वहां बच्चे वो बारिश में डांस कर रहे थे, इंजॉय कर रहे थे, तो उनको देखा थी उसे ट्यूबलाइट हो गई कि देखो कहाँ ये है और कहाँ मैं हूँ, ये तो उल्टा बारिश का आनंद ले रहे हैं, मैं इसमें डिस्टर्ब हो रही हूँ। तो द सेम वे कि भी बच्चों के साथ हम बच्चे बन जाए, उसको इंजॉय करें भी, और कुछ बातें सीखनी भी पड़ती है
जी।
आज कई जैसे हमारे एज के है कि भी उस समय में कंप्यूटर नहीं था
जी,
है ना, तो उन्होंने पढ़ाई के दौरान कंप्यूटर को नहीं सीखा है, उसके बाद सीखना पड़ा, तो जिन्होंने इंटरेस्ट लेके सीखा वो सीख गए, जिन्होंने नहीं सीखा वो बेचारे डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो वहां भी ये सोचो कि कॉन्सेंट्रेट करके मुझे इस स्किल्स को बढ़ाना है,
करेक्ट।
और कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है, हम सीखना चाहे तो किसी भी एज में हम सीख सकते हैं,
हाँ जी।
सिर्फ हमें वो फ्रेम ऑफ माइंड चाहिए कि मुझे थोड़ी सी कोशिश करनी है, फ्लेक्सिबल होना, मैं नया सीख सकता हूँ
जी।
तो ऐसे कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो हमारी कोपिंग स्किल्स भी अच्छी हो जाएगी
जी। तो ये दो नई बातें आज हमने सीखी, और कौन से ऐसे तरीके हैं जिनसे, क्योंकि देखिए सर्कमस्टांसेस तो अभी भी हैं, प्रॉब्लम्स तो हैं, वो तो आज हैं, कल हैं, हर दिन रहने ही वाले हैं, तो ऐसे में भले हमने ये चार सीज को तो समझ लिया अभी, अब और कौन से ऐसे छोटे छोटे टिप्स हैं जो आप हमें दे सकते हैं जिससे हम अपने स्ट्रेस के साथ कोप अप कर सकें।
वेरी गुड। दूसरे मैंने दो एस्पेक्ट्स में डिवाइड किया
जी,
एक तो जिसको कहते हैं इनसाइड आउट अप्रोच,
ओके,
कि अधिकतर लाइफ में हमारा अप्रोच ये है आउटसाइड इन अप्रोच,
करेक्ट,
कि पहले बाहर की चीजें अच्छी हो जाए फिर मेरा टेंशन कम होगा,
correct।
है ना, फॉर एग्जाम्पल भी किसका घर नहीं है तो जब तक मैं अपना घर नहीं बनाऊंगा शांति से नहीं रहूंगा, तो व्यक्ति डिस्टर्ब रहता ही रहता है,
क्योंकि हम उस गोल को इतना ज्यादा इम्पोर्टेंस दे देते हैं कि हम अपने मन की स्थिति को भी ध्यान देना छोड़ देते हैं। आप ये कहना चाहते हैं?
नहीं, एक ये बात भी और दूसरा ऐसा भी है कि हम समझते थे बाहर से सब अच्छा हो जाए फिर मैं मुझे शांति होगी, फिर मैं तनाव मुक्त हो जाऊंगा, परंतु वो गलत है।
ओके,
वास्तव में हमें अंदर से चेंज होना है।
ओके,
और आप अंदर से चेंज होंगे तो बाहरी परिस्थिति ऑटोमेटिक ट्रांसफॉर्म हो जाएगी
जी।
जैसे मैं उदाहरण बार बार देता हूं कई बार, कि एक बार हथौड़े और चाबी के बीच में वार्तालाप हुआ।
ओके।
हथौड़े ने चाबी को कहा, चाबी बहन तू इतनी छोटी है, मैं इतना बड़ा हूं मेरे में इतनी पावर है, मैं जोर जोर से ताले को ठोकता हूं फिर भी ताला नहीं खुलता है, तू इतनी छोटी सी है फिर भी ताले को कैसे खोल देती है। तो चाबी ने बहुत ही अच्छा जवाब दिया, कहा देख हथौड़े भैया, तू बाहर से फोर्स लगा रहा है, तू बाहर से ठोक रहा है इसलिए ताला नहीं खुलता मैं क्या करती हूँ, अंदर जाती हूँ और राइट टर्न करती हूँ तो ताला खुल जाता है। तो जीवन भी ऐसा ही है कि हमें अंदर से बाहर की ओर जाना है। इनसाइड आउट अप्रोच में छह बातें हैं कि जिसको जीवन में अपनाए तो बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है तनाव मुक्ति का, जिसमें सबसे पहली है वर्तमान में जियो। आज हम बाह्य मुखी बने हैं, बाहर का सोचते हैं, परंतु अंदर में जो संवेदना हो रही है उसके बारे में हम सजग नहीं है, तो इसलिए आवश्यकता है कि कि कुछ अभ्यास से हम वर्तमान में जीना शुरू कर दे तो बहुत बड़ा फायदा होता है। दूसरा है कि सोच को बदलना। वास्तव में जो पूरा आधार है, मूल जो है, वह हमारे विचार है। कहते हैं सोच को बदलिए सितारे बदल जाएंगे, नजर को बदलिए नजारे बदल जाएंगे, कश्तियों को बदलने की जरूरत नहीं, सिर्फ दिशाएं बदलिए किनारे खुद व खुद मिल जाएंगे। तो ऐसे ये एक बहुत बड़ी बात है कि अगर हम सोच को बदलना सीख ले तो बिल्कुल तनाव मुक्त हो सकते। तीसरा है कि दृष्टिकोण को बदलिए। वास्तव में परिस्थिति हमारे नियंत्रण में नहीं है, परंतु मनःस्थिति हमारे नियंत्रण में है। जो आप दृष्टिकोण अपनाते हैं वह आपके कंट्रोल में है। बस अगर ये एक सीख लिया हमने अच्छे से तो व्यक्ति बिल्कुल तनाव मुक्त जीवन जी सकता है। चौथी बात है कि बिलीफ सिस्टम्स को परिवर्तन करना। हम सब में कुछ मान्यताएं होती है, वह मान्यताएं ही हमारे सोच को, हमारे अनुभव को, हमारी भावनाओं को निर्माण करती है। तो अगर सही मान्यताओं का विकास हम करें तब भी हम तनाव मुक्त हो सकते हैं। पांचवा है कि स्वमान को बढ़ाइए। मैंने अनुभव किया है अधिकतर जो लोग छोटी छोटी बातों में तनाव में आ जाते हैं उनका स्वमान ठीक नहीं होता है। अगर कोई युक्ति द्वारा, प्रॉपर टेक्निक द्वारा हम स्वमान को बढ़ाए तो बहुत बड़ा फायदा है। और छठा है मूल कारण को समाप्त करो। जो भी हमें तनाव होता है, या तो जिनको छोटी छोटी बातों में अधिक तनाव हो जाता है उसके पीछे भी कुछ मूल कारण है। मनोविज्ञान एक जटिल विषय है, परंतु पूरा मनोविज्ञान अभ्यास करने के बाद मैंने ये पाया कि इसको हम सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं ताकि आम व्यक्ति उसको समझ पाए और अपने जीवन में अपना सके। तो ऐसे मैंने उसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है। उदाहरण के रूप में जैसे हमारे ब्रेन में सेंटर्स होते हैं कि हंगर सेंटर है, भूख का केंद्र है। जब वह सेंटर एक्टिव होता है तो आपको खूब भूख लगती है। ऐसे ही स्लीप सेंटर है, वो जब भी एक्टिव होता है तो आपको खूब नींद आती है। तो काफी अभ्यास करके मैंने ये पाया है कि आत्मा में ऐसे सेंटर्स क्रिएट होते हैं और आत्मा में जो सेंटर क्रिएट्स होते हैं उसका आधार हमारे अनुभव पर है। कोई भी एक अनुभव कि जिसके बारे में आपने खूब सोचा हो, खूब फील किया हो, वो अच्छा भी हो सकता है बुरा भी हो सकता है, तो वो एक केंद्र के रूप में आत्मा में स्टोर हो जाता है और वो सारा जीवन आपको प्रभावित करता रहेगा। सकारात्मक रूप से भी प्रभावित कर सकता है, नकारात्मक रूप से भी प्रभावित कर सकता है। और वह सेंटर को जानना बहुत जरूरी है। उस सेंटर को जान करके अगर हम ये समझ जाए कि क्या है, और सिंपल सी बात होती है कि अंदर में कुछ बातें गहराई में चली जाती है, जैसे कि मुझे कोई समझ नहीं रहा है, मैं अकेला हो गया हूं, मेरा कोई नहीं है, जीवन संघर्ष है, ऐसी बहुत सारी बातें नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। जैसे पॉजिटिव भी हो सकता है कि भी जीवन में प्यार है, जीवन अच्छा है, मैं सफल हूं, मेरे में सफलता के गुण है। ऐसे पॉजिटिव सेंटर्स भी क्रिएट हो सकते हैं और जैसा सेंटर उसी प्रकार से हमारे अनुभव, विचार, कार्य सब कुछ निर्माण होता है।
बिल्कुल ठीक कहा आपने डॉक्टर साहब। आज हमने दो और सीज के बारे में जाना, जो था एक था कॉन्सेंट्रेट और दूसरा था कम्युनिकेट। और साथ ही साथ आज हमने इनसाइड आउट के बारे में भी जानने की कोशिश की, जिसे हम अगले एपिसोड में ज़रूर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, थैंक यू फॉर कमिंग इन द शो। दोस्तों आज हमने क्या जाना, जब हम बात करते हैं कम्युनिकेशन की, हमारी ज़िंदगी में ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि आज अगर आप किसी एक व्यक्ति को अपनी सारी बातें बताएंगे तो आपके अंदर का मन का जो बोझ है वो भी हल्का हो जाएगा। साथ ही साथ कॉन्सेंट्रेट, कोई भी चीज़ आप कर रहे हैं उसे पूरी तरह से अगर अपना फोकस देंगे तो आप महसूस करेंगे कि आपकी ज़िंदगी में सारे स्ट्रेस जो है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। इस बात के साथ आज के प्रोग्राम को हम एंड करते हैं। कल आपसे फिर मिलेंगे आपके ही शो में, ज़िंदगी बने आसान। ओम शांति।